व्यवस्था विवरण अध्याय 6। ये वो आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इसराइल, सुन और ऐसे ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। हे इसराइल, सुन। व्यवस्था विवरण 6:1-4। ये एक बड़ी आज्ञा है जिसे वे शेमा कहते हैं। हे इसराइल, सुन। यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। व्यवस्था विवरण 6:4। हमारा परमेश्वर यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। व्यवस्था विवरण 6:5। आपको ध्यान होगा कि एक व्यवस्थापक यीशु के पास आकर पूछने लगा, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? हे इसराइल, सुन। यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। व्यवस्था विवरण 6:4-5। आपको ध्यान होगा कि एक व्यवस्थापक यीशु के पास आकर पूछने लगा, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तब यीशु ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक से ही ये संदर्भ दिया था। यीशु मसीह को व्यवस्था विवरण का पूरा ज्ञान था। जंगल में परीक्षा के समय यीशु ने शैतान को भी व्यवस्था विवरण के संदर्भ दिए थे। शेमा इसराइलियों का स्तुति गान है, मैग्ना काटा अर्थात अपने समागमों में, सम्मेलनों में, आराधनाओं में, उत्सवों में, देवनारों में वे इसका मंत्रोच्चारण करते थे। हे इसराइल, सुन। यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। वे इसे बार बार दोहराते ही रहते थे। इब्रानी भाषा में इस एक को दर्शाने के लिए दो इब्रानी शब्द है। एक का अर्थ है कि ये यौगिक एकता है, अर्थात अनेकों की एकता। दूसरा है अकेली एकता। जब हम कहते हैं कि हम मसीह में एक देह है, तब वो यौगिक एकता है, क्योंकि हम अनेक मिलकर एक होते हैं। ये शब्द इब्रानी में है अखाद। दूसरा शब्द है एकाद, जिसका अर्थ है एक, अकेला। जब हम यहूदियों के विश्वास केंद्र बिंदु शेमा यहोवा एक ही है पर ध्यान करते हैं, तो यदि वो शब्द एकाद होता तो त्रिएक परमेश्वर का विवाद ही समाप्त हो जाता, क्योंकि वो अविभाज्य एकमात्र अकेला परमेश्वर होता। परंतु यहां अखाद शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है यौगिक एकता, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये शब्द अनेक धर्मांतर के हृदय शेमा में विहित है। हमारा परमेश्वर यहोवा एक है, अर्थात तीन मिलकर एक। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौकट के बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने इब्राहिम इसाक और याकूब नाम तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वो दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। व्यवस्था विवरण 6:5-13 पद। परमेश्वर चाहता था कि वे उसकी वाणी सुने और परमेश्वर का विचार उनके जीवन और उनके जीवन शैली में व्याप्त हो जाए। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है। मेरे विचार में हमें परमेश्वर के बारे में अधिक से अधिक चर्चा करते रहना चाहिए। वे रात को सोते समय एक ही कमरे में एक साथ सोते थे। बत्तियां बंद करके वे परमेश्वर के बारे में, व्यवस्था के बारे में और परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में बातें करते हुए सो जाते थे। सुबह जागते ही वे परमेश्वर के बारे में बातें करते थे। रास्ते चलते चलते वे अपने बच्चों से परमेश्वर के बारे में बातें करते थे। वे खाना खाते समय भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार केवल परमेश्वर ही की चर्चा किया करते थे। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की बातें उनके जीवन का भाग ही नहीं, जीवन की संपूर्णता थी। केवल परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की बातें। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वे आज्ञाओं को ताबिश बनाकर अपनी कलाई पर, अपनी आंखों के बीच माथे पर बांधते थे। वे अपने दरवाजों पर व्यवस्था के सारांश को लगाते थे। अनेक रूढ़िवादी परिवार तो आज भी ऐसे ही करते हैं। वे घर में आते और घर से जाते हुए उनको स्पर्श करके चुंबन लेते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति उनके प्रेम का ये प्रमाण है। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि परमेश्वर के वचन से सदैव घिरे रहना, परमेश्वर की आज्ञाओं और उसके विधान से उसे अपने जीवन का एक जीवंत अंग बना लेना। मलाकी ने बड़ी रोचक बात लिखी है। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। मलाकी 3:16। देखो यहां सबसे अच्छी बात क्या है। आप जब भी अपने मित्रों के साथ एकत्रित हो, आप परमेश्वर के विषय चर्चा करना आरंभ कर दें, और परमेश्वर कान लगाकर सुनेगा। आप उसके बारे में क्या कह रहे हैं उससे सुनना बड़ा अच्छा लगता है। उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है जिसमें इन लोगों का नाम मूल्यवान हीरे मोती जैसे माना जाएगा। यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। ओह, हम सदा मसीह यीशु के बारे में चर्चा करते रहे। जब हम रात में सोने जाते हैं, जब सुबह सोकर जागते हैं, जब हम रास्ते में चल रहे होते हैं, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, हम उसके बोध और उसकी अनुभूति से सदा परिपूर्ण रहें। अब वो उन्हें सतर्क करता है कि वे भूले नहीं। तुम पराए देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों की देवताओं के पीछे ना हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वो जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वो तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना जैसे कि तुमने मसा में उसकी परीक्षा की थी। व्यवस्था विवरण 6:14-16 पर शैतान ने यीशु से कहा, इन पत्थरों को आज्ञा दे कि रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। शैतान ने फिर से कहा, मंदिर के कंगूरे पर से नीचे कूद जा, क्योंकि लिखा है कि वो अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा कि तेरा पैर पत्थर से ना टकराए। यीशु ने कहा कि लिखा है, तू अपने प्रभु की परीक्षा ना लेना। यीशु ने उसे व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का संदर्भ दिया था। वो वचन का विशेषज्ञ था। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना जैसे कि तुमने मसा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना जिससे कि तेरा भला हो, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाएं, जैसे कि यहोवा ने कहा था। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे कि ये चेतावनियां और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़के से कहना कि जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए और हमको वो वहां से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी इसको हमें सौंप दे। व्यवस्था विवरण 6:16-23 पद। यहां बड़ी विचित्र बात है कि परमेश्वर बच्चों के मन में सदा जिज्ञासा उत्पन्न करता है। वो जानकारी प्राप्त करके सीखे, अतः बहुत से बातें बच्चों की जिज्ञासा का कारण होती है। परमेश्वर ही इस जिज्ञासा को बच्चों के मन में डालता है। माता पिता होने के कारण आप अपने बच्चों की जिज्ञासा का पूरा लाभ उठाकर उनको समझाइए, उन्हें टाल ना दे। प्रश्न पूछने की ये प्रतिभा परमेश्वर ने बच्चों को दी है, अतः उन्हें परमेश्वर की विधियां सिखाने से ना चूके।